8-5-1. Okay, 8-5-1. Om Namah Siddhe. भगवान का जो समय सार है और उस समय सार के बाद में जो परिशिष्ट में 47 शक्तियां दी गई हैं, उसमें से अभी हम 12वें नंबर की जो प्रकाशत्व शक्ति है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी हम 12वें नंबर की जो कोई शक्ति देख रहे हैं, वैसे इनका कोई अनुक्रम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मेरा प्रश्न है। हमने पहले कौन सी देखी, पहली कौन सी देखी, हाँ, जीवत्व शक्ति। तो मुझे ये कहना है, जैसे जीवत्व शक्ति पहली, चिति, दृष्टि आदि जो हमने नंबर से देखी, ऐसे ये सब शक्तियों के कोई अनुक्रम रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका कौन सा शब्द है? अक्रम रूप आपने बताया, सहवर्ती है, बहुत अच्छा। और जो पर्याय होती वह अक्रम रूप से क्रमवर्ती। ये बात ध्यान में रखते हुए यहाँ भले हम कहें कि 11वीं शक्ति हमने ये देखी, 12वीं ये देखी, अभी 13वीं फला फला देखेंगे, असंकुचित विकासत्व वगैरह वगैरह, ये नंबर तो हमें समझने के लिए रखे गए हैं। अभी यहाँ कौन सी बात चल रही, प्रकाशत्व शक्ति। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश का अर्थ जो हम लेते हैं वो यहाँ नहीं है, ये कोई जुदा ही उसका अर्थ है। तो क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रकाश शक्ति। हम पृष्ठ क्रमांक 71 पर आए हैं। स्वयं प्रकाशमान विशद एटले स्पष्ट एवा स्वसंवेदनमयी एटले स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति। ये प्रकाश शक्ति के कारण से कहो कि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, यानी जानने में आता है, जनाने में आता है, दोनों लेना। तो वह जो प्रकाशमान पना है वो कैसा है, स्पष्ट ऐसा स्वसंवेदनमयी है, जैसे हमने आत्म ज्ञानमयी, आत्मदर्शित्वमयी इस तरह से ली थी बात, यहाँ पर भी वैसे कह रहे हैं स्वसंवेदनमयी। यानी इसमें क्या बात है कि यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और वह स्वयं जानने में आवे, ऐसा उसका स्वभाव है। और उसका ये किसका कार्य हो रहा है, तो कहते हैं प्रकाशत्व शक्ति। यहाँ कहीं प्रकाश शक्ति लिखते हैं, कहीं प्रकाशत्व भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा है वो हम देखेंगे, प्रकाश शक्ति। क्या कहा, स्वयं प्रकाशमान विशद एवा स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। ये एवा बराबर है क्या एवी स्वसंवेदनमयी, मेरे को ये समझा नहीं। स्वयं प्रकाशमान स्पष्ट एवा विशद एवा अभी ये एवा जो लिखा है वो इस प्रकाश शक्ति के लिए लिखा है या विशद
स्व संवेदन के लिए लिखा है?
ये जो मतलब ये गुजराती का ग्रामर में
स्व संवेदन छे वो विशद है और उसमें प्रकाश शक्ति है।
चलो जो भी है आप समझ लेना।
स्पष्ट ऐसे स्व संवेदन में प्रकाश शक्ति, स्व संवेदन का विशद ये विशेषण हो गया। तो स्व संवेदन यानी विशद एवा स्व संवेदन और मई है वो शक्ति के लिए वो श्रीलिंग लगाया, परंतु संवेदन ये पुल्लिंग है तो उसके एवा लगाया उसके लिए।
बहुत बार ऐसा होता है कि ये गुजराती ग्रामर मेरी समझ में नहीं आता। जो भी है आई शू कहे छे के भगवान आत्मा मां एवी प्रकाश शक्ति छे के जे स्वयं एटले पोता थीज प्रकाशमान छे, यानी आत्मा स्वयं ही प्रकाशमान है, उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य बाह्य कोई चीज की गरज नहीं है। अब यहाँ स्वयं प्रकाशमान है यानी स्वयं जानने में आने योग्य है ऐसा भी लेते हैं। अने स्पष्ट स्व संवेदनमयी चाह पोता थी पोतानु प्रत्यक्ष वेदन थाय एवी आत्मा मां त्रिकाल प्रकाश शक्ति छे। आमा महत्वनी बे वात छे के आत्मा नो प्रकाश स्वभाव, अभी ये प्रकाश स्वभाव की बात बता रहे हो कि पोते पोता थी ज प्रकाशमान छे अने एने कोई परनी अपेक्षा नथी। यानी ये जो आत्मा का प्रकाश स्वभाव है, प्रकाश स्वभाव कहो या जानने में आने की शक्ति रूप जो कोई प्रकाश स्वभाव है, वह पोते पोता थी ज प्रकाशमान छे यानी वह स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, उसमें अन्य किसी की पर की अपेक्षा नहीं है। आगे दिया होगा? हाँ हाँ दिया दिया दिया। हाँ दूसरा पॉइंट स्पष्ट यानी विशद ऊपर जो लिखा था स्व संवेदनमयी छे एटले स्वानुभव मां आत्मा प्रत्यक्ष स्पष्ट जणाय एवो आत्मानो प्रकाश स्वभाव छे। यानी स्वयं प्रकाशित भी हो रहा है और दूसरे मतलब अपने स्वयं के ज्ञान में भी जानने में आ रहा है। जैसा जो यहाँ क्या दिया है दीवो होए, वह स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और अन्य को भी प्रकाशित कर रहा है। अभी देखो यहाँ कहते हैं जेम दीवो स्वयं पोता थी ज प्रकाशमान छे तेने देखवा प्रकाशवा बीजा दीवानी जरूर नहीं, तेम भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश नु बिंब प्रभु स्वयं पोता थी ज प्रकाशमान छे। आहा हा स्व संवेदन मां पोते ज पोता ने प्रकाशी रहयो छे तेने प्रकाशवा, उसका अर्थ क्या दिया जानवा बीजा कोई नहीं, तो बीजा कोई नहीं में किसको लिया डैश डाल के, ते राग नहीं व्यवहार नहीं के निमित्त नहीं अपेक्षा नथी। व्यवहार नहीं व्रतादि रागनी के निमित्त नहीं देवगुरु आदि नहीं अपेक्षा विनाज स्व संवेदन मां स्वानुभव में दशा मां प्रत्यक्ष थाय एवो आत्मानो प्रकाश स्वभाव छे। भाई बाह्य निमित्त थी के व्यवहार थी प्रत्यक्ष वेदन मां आवे एवो आत्मानु स्वरूप नथी, सूक्ष्म वात छे प्रभु। देखो जब ऐसा स्वामी जी को इतना गहरा अर्थ पता लगा समय सार जब उन्होंने पढ़ा होगा तब उनके अंतरंग में कौन सी स्थिति तैयार हो गई होगी कि जो पहले से ऐसे मानने वाले संप्रदाय में उनका जन्म हुआ कहो वो उनकी आयु आगे बढ़ी, उम्र के 45 साल तक तो वहीं थे ना, वहां तो शुभ भाव से धर्म होगा व्यवहार से धर्म होगा निमित्त से धर्म होगा देवगुरु शास्त्र के कारण से ही धर्म होगा ऐसी जो बातें चल रही थी, यहाँ तो जब उनके ये प्रकाश शक्ति जब ज्ञान में आई होगी तो कहते हैं ये तो अपने स्वयं के ही कारण अपने ज्ञान में आने वाली स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये स्वयं कैसी है स्व संवेदनमयी ये प्रकाश शक्ति है। तो इसलिए कहते हैं कि ये अभी का पैराग्राफ है, उसमें नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, व्यवहारनी एटले व्रतादि रागनी के निमित्तनी देवगुरु आदिनी अपेक्षा विनाज स्व संवेदनमा एटले स्वानुभाव स्वानुभव में दशा में प्रत्यक्ष था है। ऐसी उसकी ही उसका ही स्वभाव है, उसका ही मतलब आत्मा का ही ऐसा स्वभाव, एवो आत्मानो प्रकाश स्वभाव छे। और आगे लिखते हैं बाह्य निमित्त के व्यवहार थी प्रत्यक्ष वेदन में आवे एवो एनु साम आत्मानु स्वरूप नहीं। जब ये बात उनके ज्ञान में आई होगी तो उनको कितना आनंद हुआ होगा, कितना उल्लास आया होगा, और उनको यत किंचित भी लगा नहीं होगा कि मैं वो सब छोड़ छाड़ कर इधर आ गया हूँ। आत्मा मां जेम ज्ञान दर्शन आदि छे तेम एक प्रकाश शक्ति छे तेनु कार्य शू, तो कहे छे स्व संवेदन मां आत्मा प्रत्यक्ष थाय ते तेनु कार्य छे। सम्यक दर्शन तथा मतिश्रुत ज्ञान मां स्व संवेदन द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष थाय अनुभवाय ते आ शक्तिनु कार्य छे। कोई कहे के मने अरूपी आत्मा केम जणाय, तो कहे छे स्व संवेदन मां आत्मा प्रत्यक्ष जणाय एवो एनो स्वभाव छे। यानी इसका क्या अर्थ हो गया कि दूसरे कोई कारण से ये आत्मा जानने में आवे ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं, स्वयं ही प्रकाश शक्ति, प्रकाश शक्ति के कारण से प्रत्यक्ष जणाई जाए जणाय एवो एनो स्वभाव छे। भाई परोक्ष रहे वो आत्मानो स्वभाव नहीं, हा पण ते इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, स्वरूप प्रत्यक्ष स्व संवेदन प्रत्यक्ष छे। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं का अर्थ क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से जाना जाए ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, स्वरूप प्रत्यक्ष है। यानी उसका स्वरूप कैसा है कि प्रत्यक्ष होवे, यानी कैसा है तो ज्ञान है ना, इसलिए कहते स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। आहा स्व सन्मुख तथा आत्माना अतीन्द्रिय आनंद नु प्रत्यक्ष वेदन थयू ते प्रकाश शक्ति नु कार्य छे, साथे व्यवहार छे ने बाह्य निमित्त छे, तो आ कार्य निबज्यू छे एम नथी। क्या कहा कि अपना जो प्रत्यक्ष वेदन हो रहा है अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हो रहा है वो प्रकाश शक्ति का कार्य है। कहते इसके लिए अन्य कोई निमित्त के कारण से वो उत्पन्न हुआ होगा ऐसी बात नहीं है। प्रश्न, तो शू व्यवहार नहीं निमित्त नहीं, आप व्यवहार ने निमित्त ने उड़ाओ छो? अरे भाई व्यवहार नहीं निमित्त नहीं एम कौन कहे छे? व्यवहार छे, बाह्य निमित्त छे, ते जेम छे तेम न जाने। यानी कई बार वो कहते ना निमित्त ने निमित्त तरीके रेवा दियो, तो ए तेम न जाने तो तेनु ज्ञान मिथ्या छे, अने व्यवहार ने निमित्त थी आत्मा प्रत्यक्ष थाय वा तेना हा? क्या कहा? देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। पड़ी व्यवहार ने निमित्त थी आत्मा प्रत्यक्ष थाय वा तेना निर्मल ज्ञान श्रद्धान प्रकट थाय एम माने ते विपरीत श्रद्धान छे। ये हम ये बोलते थे ना आपको कि जो निमित्त से कार्य होता है ऐसा जानते हैं उसका ज्ञान खोटा। नहीं नहीं निमित्त है ही नहीं ऐसा जो कहते हैं उनका ज्ञान खोटा, के निमित्त तो है लेकिन निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानते हैं उनका श्रद्धान खोटा। यही बात है, यहीं से तो लिया है और क्या है। इन्होंने जरा लंबे लंबे बताया है, क्या कहा देखो 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 फिर से सेकंड लाइन में यहाँ क्या कहते हैं देखो, वही व्यवहार ने निमित्त थे आत्मा प्रत्यक्ष था वह तेना निर्मल ज्ञान श्रद्धान प्रकट था माने थे विपरीत श्रद्धान छे। और उसके पहले क्या लिखा है, पहले लाइन में व्यवहार छे बाह्य निमित्त छे ते जेम छे तेम न जाने तो तेनु ज्ञान मिथ्या छे। आगे આય એમ વાત છે કે વ્યવહાર કે બાહ્ય નિમિત્તથી આત્મા પ્રત્યક્ષ ન થાય, પણ તેનું લક્ષ્ય છોડી સ્વસન્મુખતા કરતા સ્વસંવેદનમાં જ આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ હા હા, આવો આત્માનો પ્રકાશ સ્વભાવ છે. અહીં તો વ્યવહાર ને નિમિત્તનું જેમ છે તેમ સ્થાપન છે, યાને ઉસકી સ્થાપના કી અને ઉસકો બતાયા ગયા હૈ, પણ તેના લક્ષ્ય એટલે વ્યવહારના અને નિમિત્તના લક્ષ્ય એના આશરે આત્માનુભવ રૂપ એટલે આત્માના જ્ઞાન શ્રદ્ધા રમણતા રૂપ ધર્મ પ્રકટ થાય એ માન્યતાનો નિષેધ છે, નિમિત્તનો નિષેધ નથી. કેમ કે એવું વસ્તુ સ્વરૂપ નથી. સમજાણો કાંઈ? આહા, અનંતકાળથી 84 અવતારોમાં રખડતા રજળતા ભાઈ, તને માંડ આ મનુષ્યભવ મળ્યો અને તેમાંય જૈનમાં તારો જન્મ થયો, એ કોઈ મહાભાગ્ય છે. આહા હા, આ બધું હોવા છતાં અંતરમાં રુચિ લાવી તું આ તત્વજ્ઞાનની ભેદજ્ઞાનની તારા હિતની વાત તું ન સમજે તો અંતર અનુભવ ક્યાંથી થાય? અરે ભાઈ, તું સાંભળ તો ખરો. અહીં સંતો પરમાત્માનો સંદેશ પોકારીને જગત પાસે જાહેર કરે છે કે પ્રભુ તારા સ્વસંવેદનમાં તારો આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય એવી પ્રકાશ શક્તિથી તું ત્રિકાળ ભરપૂર છો. કેમકે અમને તો પહેલે નિયમ દેખાતા ને ભાઈ કે જો ગુણ હોતા હૈ વો હમેશા દુસ જીવ કે સાથ રહેતા હૈ, યાને પૂરે ભાગ મેં ઓર પૂરી અવસ્થા મેં, અવસ્થા યાને ઉસકા જબ જબ તક પરિણમન હોગા. કબ પરિણમન હોગા? અનાદિકાલ સે અનંતકાલ તક. તો ગુણ કભી ઉસસે જુદા હો હી નહીં સકતા હૈ, ઇસલિયે કહેતે હૈ કે ત્રણેય કાળ ત્રિકાળ તું પ્રકાશ શક્તિથી ભરપૂર છો, એટલે એનાથી પૂરેપૂરો યુક્ત છો. દેખો યહાં પર એક બાત મુજે પડતે પડતે એ બાત ખ્યાલ મેં આઈ, યહાં ક્યા કહે રહે દેખો, તું અભી એ માન તુજે મનુષ્ય ભાવ મિલા હૈ ઓર ઉસમે તેરે જૈન કુલ મેં જન્મ હુઆ હૈ ઓર સાથ સાથ મેં તુજે સચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કા સમાગમ મિલા હૈ, એસી જબ બાત કહેને મેં આતી હૈ તો હમે તો અપને તરફ દેખતે હુએ એસા આનંદ હોતા હૈ, અરે મેં ભી મનુષ્ય ભાવ મેં હું, જૈન કુલ મેં જન્મા હું, સચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી હમે ઉપલબ્ધિ હુઈ હૈ, કહો યા ઉનકે સમાગમ મેં હમ હૈ, ઇતના કરકે હમ સંતોષ કર દેતે. ઉસકે આગે કી જો મૂળ વાત હૈ કે ભાઈ જો જિનેન્દ્ર ભગવાન ને બાત બતાઈ હૈ કે તું જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા હૈ, ઉસ રૂપ તું સ્વયં કો માન, તો હમને તો જાનને તક કા કાર્ય ક્યા ઓર અપને કો કૃતકૃત્ય સમજા વેદક ને હું. તો યહાં સે હમે આગે બઢના હૈ, યે જિમ્મેવારી હમારી હૈ, ઇતની બાત ધ્યાન રખના. ક્યોંકિ હમ ક્યા હોતા હૈ, અભી માન લો અભી હમ લૌકિક કી બાત બતાતે હૈં આપકો, તો મેં મેરી બાત બતાઉંગા આપ અપની સમજ લેના, કે જબ હમને દુકાન ચાલુ કી થી તો પહેલે હી દિન મેં હમકો 50 રૂપિયે કા બિકરા હુઆ, મુજે યાદ હૈ પક્કા, પહેલે દિન 50 રૂપિયે કા ફોટો ખીચા થા. કબ? 1956 મેં. હા, તો હમને તો એસા માના કે ઓ રે ઓ, ઓર ફિર આગે 3-4 દિન કુછ નહીં મિલા, વો છોડ દેના. તબ એસા લગતા થા કે અરે કમ સે કમ એક મહિને મેં 300 રૂપિયા તો આના ચાહીએ ના, તીન ભાઈ કામ કર. ફિર મિલતે ગયે પહેલે, પહેલે 1000 રૂપિયા મિલને લગા તો અરે ક્યા બાત હૈ, યાને હમ ઉસમે સંતુષ્ટ હુએ, મુજે યે બતાના હૈ. નહીં અભી આગે બઢકે જો કુછ હુઆ વો છોડ દો, પણ હમે ક્યા કહેને કે ઇતની બાત હો ગઈ તો હમ સંતુષ્ટ હો જાતે હૈ. યહાં કહેતે હમ યહાં તક પહોંચે હૈ, દેવગુરુ શાસ્ત્ર કા સમાગમ મિલા હૈ. સાહેબ આપ જાનતે ને દિન મે કિતને હી ઘંટે સ્વાધ્યાય ભી કરતે હૈ, તો વહ ભી આપ અટકે હુએ હૈ, એસા યહાં હમે બતા રહે. હમે ઇસસે આગે બઢકર અપને સ્વરૂપ કી બિલકુલ અભી તો પહેચાન તો હો ગઈ હૈ, બસ અભી મેં એસા હી હું એસી માન્યતા હો જાય, ઇતની જવાબદારી તો અપની હૈ ભાઈ, યે કોઈ દૂસરા કોઈ કરે કરાવે એસી બાત નહીં. तो हम कहीं ना कहीं हाश, अबे आपने तो आई हमारा फला फला छे ये कहीं जोता नहीं, एक ने 50 बार बात करी ये कहीं क्या ध्यान भी नहीं देते हैं, बिल्कुल कोई बात मानते ही नहीं है, उससे तो अच्छा हम, और हमें ऐसे कोई लोग मिलते हैं नहीं आप तो बराबर है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने तो सही मार्ग पकड़ा है, तो हम उसे अटक गए। ये पढ़ते पढ़ते मेरे ज्ञान में मतलब ऐसा कुछ सोच चली, मैंने कहा बताएं सबको। हाँ बोलो।
देखो अभी ये उत्तर के तीसरे लाइन में हमने देखा ना, व्यवहार के बाह्य निमित्त थी आत्मा प्रत्यक्ष न था, वो है उनकी सत्ता तो है, व्यवहार भी है बाह्य निमित्त भी है, पण तेनु लक्ष्य छोड़ी, वो वहाँ देव गुरु शास्त्र भी है, उनका उपदेश भी है सामने, शास्त्र भी हमने पढ़ा, अब उसका लक्ष्य छोड़कर स्वसन्मुखता करता स्वसंवेदन माज आत्मा प्रत्यक्ष थाय छे, तो उसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, आत्मा में ही ऐसी प्रकाश शक्ति है, वो स्वयं अपना अनुभव कर लेता। ये नियम सार में भी ये ऐसी बात थी कि अपना आप स्वानुभव करना, अपने आप में स्थिरता करना, ये आत्मा के ही गुण है, वो सहज है, पर हमारी जब तक बाह्य में रुचि पड़ी है, जब तक हम स्वयं बस अभी शास्त्र पढ़ा है, अभी प्रकाश शक्ति हो या सर्वज्ञता शक्ति, कोई भी शक्ति हमने पढ़ी है और अपनी आत्मा की महिमा आती है, तो बस अंतर्मुख हो जाओ, अभी कुछ नहीं करने की जरूरत, तो विकल्प कैसा करे, अरे विकल्प का लक्ष्य छोड़ना है, अभी कुछ करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही ऐसी अनंत शक्तियां हैं, वो स्वयं अपना अनुभव कर लेते, तो हमने कहीं ना कहीं निमित्त से कुछ होगा, मुझे क्या करने से सम्यक तो होगा, ये ऐसी कहीं ना कहीं अटक रही है। ख्याल में आती है ना बात, कि ध्यान कैसे करना, विचार कैसे करना, चिंतन कैसे करना, आत्मा में सब कुछ परिपूर्ण शक्तियां उसमें अंदर पड़ी है, कुछ करने से बाह्य सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, सही हमने जान लिया है, बस अभी अंतर्मुखता करने की बाकी है, और अंतर्मुख अवस्था में ये भले विकल्प आएंगे भी और स्वयं छूट भी जाएंगे, आत्मा में ही ऐसी शक्ति है कि वो अपना अनुभव कर ले। अभी सभी जो शक्तियां देख रहे हैं ना, ऐसी बात है ना, कोई भी ले लो, किसी भी एक शक्ति का बरोबर उस पर विचार करते करते गहराई तक, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा, तत्व चिंतन में वो उपयोग लगा के उसमें डूब जा, तो उस ऐसी अवस्था में आत्मानुभव सहज अपने आप होता है, फिर वो कैसा करना, उपयोग कहाँ लगाना, ये कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है, हमने उसका कहीं निमित्त से होता है, अभी क्या करना है तो होगा ऐसा मान रखा है। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा, हाँ अनुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष होता है ना, अनुभव उसका प्रत्यक्ष होता है, उसका जो आनंद आया वो प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ बिल्कुल, परंतु कुछ आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होंगे।
एक मिनट, अभी आपका जो पूछना है कि मति शुद्ध ज्ञान में वो आत्मा प्रत्यक्ष कैसा होता होगा, ऐसा आपका प्रश्न है ना, तो आपको आपने तत्वार सूत्र के माध्यम से ऐसा पढ़ा है, आद्य परोक्षम, यानी क्या, जो पांच ज्ञान के भेद बताए, मतलब पर्याय की अपेक्षा से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि, उसमें से अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, उसमें से पहले दो जो है वो परोक्ष है, और आप यहाँ बता रहे हैं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, तो आई नो तो आपका ये मानना है कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान किसको कहते हैं कि जिसमें पांच इंद्रिय और मन, इसमें कोई ना कोई तो अवश्य निमित्त रूप से होता है, तो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से इसमें सभी लेना, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब यह, ये जो हमने परिभाषा पढ़ी है वह व्यवहार परिभाषा है, निश्चय से क्या है कि जब यह जीव अपने स्व को जानने में युक्त होगा तब वह इंद्रियों के माध्यम की वहां कोई गरज ही नहीं है। हाँ, आत्मा झलकेगा वहां तो जो अतीन्द्रिय आनंद जो आवेगा, बाकी ये अज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र गुण है, ऐसा कुछ नहीं पता लगेगा। हाँ, और जो अभी ये आत्मा का क्षेत्र है अपना, सॉरी ज्ञान का क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहेगा, यानी कोई भेद वहां नहीं रहेगा। वो जो अभेद जब ऐसे आत्मा का अनुभव होगा, उस समय अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन होगा, वह वेदन कहो, अनुभवन कहो या ज्ञान कहो, वह प्रत्यक्ष है। तो इसलिए उसको कहते हैं अनुभव प्रत्यक्ष है,
यानी आनंद का प्रत्यक्ष वेदन हुआ है। अब उस समय कौन सा ज्ञान है? मतिशुत ही ज्ञान है ना। अभी इन्हें पर को जानने में इंद्रिया मन निमित्त है, अपने आप को जानना है तो, पर प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, उसके असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हुए है। नहीं समझा? देखो देखो,
मैंने गुण पे घटाया, आप प्रदेशों पे घटा रहे।
अभी आपको जो ज्ञान है ना, आत्मा कितने प्रदेशी, हमने पूछा आपको, बोलो, असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। मुख्य कुछ गुण बताओ, कोई मुख्य गुण? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर, ये जो कुछ सुख वगैरह, अभी हम ये शक्तियां पढ़ रहे हैं, ये आपने जाने के नहीं जाने, जाने परोक्ष जाने। तो अभी आत्मा का अनुभव हुआ तो ये जो जाना है वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? नहीं, नहीं, ये जो आपने जो असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञानादि अनंत गुण है, ये जो जाना है, ये ज्ञान तो वहां भी परोक्ष ही रहेगा, परंतु उसमें से जो आत्मा का लक्ष्य करने से जो अतीन्द्रिय आनंद की जो कुछ वहां आपको अनुभूति हुई, वो प्रत्यक्ष है। ख्याल में आई ना बात? अभी जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, उसका अनुभव हो रहा है आपको, परंतु वहां क्या हो रहा है ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो किसी डॉक्टर ने उसमें वो कोलोनोस्कोपी की, क्या किए, कुछ अंदर से वो इन्वेस्टिगेशंस किया और आपको बताया, उसने तो हम कहते हैं कहने के लिए, जिसको व्यवहार में प्रत्यक्ष कहते हैं, उसने तो प्रत्यक्ष जाना है अंदर क्या है, और आपने क्या अनुभव किया है? वो दुख का वेदन किया है। अब यहाँ क्या है, आत्मा संबंधी जो कुछ ज्ञान था उसने आगम के द्वारा प्राप्त किया था, वो ज्ञान जो परोक्ष कहेंगे, आगम प्रत्यक्ष जो है, आगम के द्वारा जानना है, वो जानना तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो फर्क क्या हुआ? ये जो हमने जाना है उसका निर्णय सहित हमने ऐसा ठोस जाना उसको, और अपने आत्मा के लक्ष्य किया, अंतर्मुख अवस्था की, तो आत्मा में से आनंद की उत्पत्ति हुई, वो आनंद का हमने प्रत्यक्ष वेदन किया। तो ये आनंद का, अपने आत्मा का स्वयं वेदन करे ऐसे आत्मा में शक्ति है, उसका नाम है प्रकाश शक्ति। कुछ निमित्त आया और हमें अनुभव हो जाएगा, अरे कर्म हटेगा दर्शन मोहिनी और हमें अनुभव हो, वो होते हैं वहां पर, उसका ज्ञान भी कराया जाता है। तो ये जो बातें हैं, ये कितना स्वाधीन है और अनुभव भी कितना स्वाधीन है, ये बात यहाँ बताते हैं। एक एक शक्ति के बिल्कुल उस पर विचार गहराई से करना। हाँ देखो, 71 पृष्ठ पर कहाँ कहाँ
है ना, प्रत्यक्ष जानने में आवे ऐसा उसका स्वभाव है, वो प्रकाश शक्ति का कार्य है।
स्व संवेदन मा जना है, स्व संवेदन, वेदन किसका हुआ? सुख का वेदन हुआ, अनंत गुणों का वो निचोड़, वो सुख मिला उसको, अभेद अखंड, उसमें ये ज्ञान का सुख है, ये दर्शन का सुख है, ऐसी बात नहीं, पूरा अखंड अनंत गुणों का जो कोई रस है वहां पर, वो सुख की जो अनुभूति हुई, उसमें कोई डिफरेंस उसको ख्याल में नहीं आ रहा है, बस वहां अतीन्द्रिय आनंद का ही वो भोग कर रहा है, वो तो उसके प्रत्यक्ष है ना। नहीं तो समझा कैसा सम्यक दर्शन हुआ? सम्यक दर्शन हुआ उस जीव को समझेगा कि नहीं समझेगा?
देखो अभी हम आपसे दूसरी बात पूछते हैं लौकिक उदाहरण के माध्यम से। आप कहीं बाहर गांव जाके आए तो आपके पीठ में दर्द चालू हुआ, तो हमने दूसरे से पूछा भाई क्या हो गया? अरे उनके पीठ में दर्द हुआ। तो अभी इनका जो पीठ में दर्द हुआ कहना है अन्य किसी का, वह तो परोक्ष है, और जो पीठ में दर्द हुआ आप स्वयं कह रहे हो वो अनुभव प्रत्यक्ष है कि नहीं? ख्याल में है ना? वैसे आत्मा का अनुभव होगा कौन से ज्ञान में? होगा अवधि ज्ञान में, क्यों नहीं होगा? हाँ अवधि ज्ञान पुद्गल को जानने में निमित्त है, मनोपरि ज्ञान भी पुद्गल को जानेगा, लेकिन दूसरे के मन में स्थित उसके विचारों में वगैरह वगैरह जो आप जानते हैं सब। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव होगा, वो भले अन्य बारे में वो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियां तो बाह्य वस्तु को ही जानेगी, पुद्गलों को ही जानेगी, और मन है वो रूपी अरूपी दोनों को जानेगा। ख्याल में अभी ये पर को जान रहे तो वो सब अपना परोक्ष ज्ञान ही है, क्योंकि हमने हर समय हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ऐसा देखा है आपने? नहीं हमने नहीं देखा है। फिर क्यों छात्र में लिखा है ना भाई, तो वो कैसा ज्ञान हुआ? जैसा आपने बताया कि अरे इनके पेट में दर्द हो रहा है, आपने कहा से जाना? अरे उन्होंने बताया भाई, है ना? और आप जो कह रहे हैं वो कैसा अनुभव प्रत्यक्ष है? अनुभव मैंने किया ना, पीठ मेरी दुख रही है, मैंने उसका अनुभव करके कहा। वैसा यह जीव जब स्व को जान रहा है, अपना मति शुद्ध ज्ञान का उपयोग स्व को जानने में लगा है, तो उसमें इंद्रिया मन बिल्कुल निमित्त नहीं है। तो निमित्त है वो परोक्ष ज्ञान, निमित्त नहीं है वो प्रत्यक्ष ज्ञान, तो प्रत्यक्ष है। आ गई बात थोड़ी ख्याल में? चलो अब आगे बढ़ेंगे। ये बीच में जो पैराग्राफ है वहां लेंगे अभी। हवे जिंदगी मां कदी आवी तत्वनी वात सांभळवानी फुर्सत न होय, ए तो बेचार बिचारा मोटा करोड़पति होय तोय बिचारा हो, रळवू कमावू खावू पीवू ने खेलवू ने विषय भोग मां रियमू, बस एम जिंदगी वितावे छे, पण ए तो जिंदगी एळे जाय छे हो, એટલે નિષ્ફળ જાય છે। અરે પ્રભુ તું કોણ છો ને તારું કાર્ય શું છે તેની તને ખબર નથી? આહા, તું આત્માનું એટલે અંતર અનુભવનું કાર્ય કરવાનું છોડી દઈને દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજા ઇત્યાદિ શુભરાગની ક્રિયામાં ધર્મ માની ત્યાં જ રોકાઈ ગયો। અભી હમ તો સમજો દયાદાન વગેરે કરતે એડિશનલ ક્યાં કર રહે, સ્વાધ્યાય કરીને धर्म मानी, क्योंकि तो त्याच रोकाई गयो, तो वो ना धर्म है और ना धर्म का कारण है। ख्याल में आया? तो यहाँ हमें अपने तरफ जाना है, तो यहीं हमें रुकना नहीं है, इसके आगे बढ़ना है। कितनी बात ध्यान में लेनी है। तो कह रहे हैं
ये स्वसन्मुख होने की बात है ना?
हाँ।
देखो ऊपर से तीसरी लाइन में आपके वो प्रश्न का उसमें भी उत्तर एकदम इस पेज के तीसरी लाइन, स्व सन्मुख थता आत्माना अतिंद्रिय आनंदनु प्रत्यक्ष वेदन थयुं, एक्चुअली हुआ है उसकी बात करते। किसका प्रत्यक्ष वेदन? आनंद का। कब हुआ? स्व सन्मुख होने पर। उसके पहले क्या किया था? निर्णय तक पहुंचा था। निर्णय करते करते वो तत्व विचार की उस विचारधारा में इतना मग्न हुआ और अंतर्मुख उसके परिणाम चल रहे हैं, तो करते करते आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ, यानी आनंद की अनुभूति प्रकट हुई। उस आनंद के द्वारा उसने जाना कि ये सम्यक दर्शन का समय है। समय एक है, आत्मा का आनंद प्रकट होना, उसी को आत्मानुभूति कहो, उसी को सम्यक दर्शन कहो, उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, उसी को धर्म प्रकट हुआ कहो।
और यहाँ तो उसी को प्रकाश शक्ति का कार्य कर,
यानी आत्मा में ही ऐसी शक्ति है, वो स्वयं अपने आनंद का वेदन करे। आत्मा अखंड लेने नहीं, यहाँ एक एक शक्ति का अलग अलग कार्य बता रहे, पर शक्ति आत्मा की है, यानी आत्मा अपना अनुभव करे, ऐसी आत्मा में शक्ति पड़ी है, उसका नाम है प्रकाश शक्ति। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना।
अरे भाई, जो अनुभव चल रहा है ना,
अनुभव क्या तो है, अनुभव ज्ञान है,
वो ज्ञान की परिणति है ना।
अनुभव का अर्थ है ज्ञान है। किसका ज्ञान कर रहा है अभी? अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञान चले ना, अपने पूरा अखंड आत्मा को उसने लक्ष्य में लिया है। ज्ञान तो पूरी पर्याय है, उसमें उपयोग कहाँ है, तो स्व सन्मुख उपयोग है। ये जो आनंद हुआ, हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, आनंद की अनुभूति होती है, वो तो मति शुद्ध ज्ञान की हुई, पर आत्मा का ज्ञान हुआ, तो आत्मा का ज्ञान हुआ ये कैसे जाना आपने? आनंद के द्वारा ही जाना, परंतु आत्मा कैसा है ये कैसे जाना था? आगम से जाना था। उस ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं होने वाली। जैसा हमने पहले आगम से जाना था, वो यदि सही जानते हैं तो ही आत्मा की अनुभूति होती है। उसमें अगर कहीं खोट है, निमित्त से कार्य होता है ऐसे या निमित्त होता है नहीं होता है, ये जो पर्याय के बारे में कोई गलत मान्यता है, द्रव्य के बारे में मान्यता गलत है, क्रमबद्ध पर्याय की मान्यता गलत है, सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में कोई गलत मान्यता है, अभी बात आई ना स्त्री को मोक्ष होता है, अन्य अन्य जो कोई बात है उसमें जिसकी गलत मान्यता है, और वो कितना ही वो सन्मुख करो और आत्मा का अनुभव करो, नहीं होगा। ज्ञान पहले सही था, अब सम्यक हुआ, परंतु उस ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा संबंधी ज्ञान था। अब आत्मा को अनुभव से जाना उसने, यह मैं हूं, ये सुख का वेदन हुआ ना, तो खात्री हो गई उसके, उसको सील लग गई। अभी
हम दूसरी भाषा में समझे इसी बात को, आपकी सही श्रद्धा हुई, सही ज्ञान, पहले तो सही ज्ञान हुआ आगम के अनुसार कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मैं बिल्कुल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन श्रद्धा ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब ऐसा समय आया कि आपने आगम के अनुसार अपने स्वभाव का बराबर ज्ञान किया, और उसी समय मान लो कि श्रद्धा ने भी एक्सेप्ट किया, तो वो जो ज्ञान जो आपने मान लो कि 50% आपने ज्ञान किया, अभी परसेंट लगाना नहीं लेकिन बताता हूँ, और श्रद्धा ने भी एक्सेप्ट किया, तो वो पहले 50% ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। श्रद्धा ने यस बोल दिया तो उसी ज्ञान को, उसमें बढ़ोगी नहीं कुछ भी, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। अब अपनी बात कहाँ हो रही है, ये अतीन्द्रिय आनंद का वेदन जो हुआ है वो कब होगा, कि जब उसकी सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही श्रद्धा और स्वरूप में स्थिरता ये होगी, उसी समय उसको आनंद का वेदन होगा। तो हमें आत्मा का अनुभव हुआ है, इसका लक्षण क्या है, मोहर किसने मारी, तो अतीन्द्रिय आनंद ने। अब आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं, ये अभी हमने जो पढ़ा था, ये पैराग्राफ के आखिर से दूसरी लाइन में, ये दयादान व्रत भक्ति पूजा इत्यादि शुभराग्नि क्रिया मा धर्म मानी त्याज रोका गयो पन भाई, ये तो जग पंथ छे धर्म पंथ नहीं, धर्म पंथ तो स्वानुभव में ही कोई अलौकिक छे, यानी स्व का अनुभव करना जो बात है, और यहाँ उसमें ये प्रकाश शक्ति वाली बात हो रही है। अभी बहुत थोड़ा सा गहरा विषय है, ये हमने पढ़ा है, फिर भी दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। कहते हैं प्रवचन सार मां गाथा 172 मां अलिंग ग्रहण शब्द आवे छे, श्री अमृतचंद्राचार्य देवे ते शब्दना 20 अर्थ कह रहा छे, और यही गाथा यहाँ समय सार में 49 नंबर की है, उसमें उन्होंने 6 अलग अलग प्रकार के उसके अर्थ किए, ये 6 अलग और प्रवचन सार के 20 अलग। तो वहाँ गुरुदेव यहाँ प्रवचन सार का रेफरेंस देते हुए हमको समझा रहे, उनको क्या बताना है कि यह जो आत्मा का अनुभव है उस अनुभव में अन्य कोई पर पदार्थों की वहाँ गरज नहीं, निमित्त नहीं, कुछ उसके कारण से होता नहीं, वह तो स्वानुभवमयी क्रिया है और वो प्रकाश शक्ति का कार्य है। ये बात समझाने को ये 6 पॉइंट हमें बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ग्राहक यानि ज्ञायक एवा जेने, यानि हमें किसको जानना है, आत्मा को। वो आत्मा कैसा है, ज्ञायक है। एवा जेने लिंगो वड़े, लिंगो वड़े एटले के हाँ जी इंद्रियो वड़े, ग्रहण एटले जानवू थतू नथी, याने जो आत्मा है उसको इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहते हैं। आ रीते आत्मा हाँ
जाना नहीं जाता, वो दूसरे शब्द में
हाँ जानतो नथी, हाँ बराबर जानवू थतू नथी लिखो ने, लिखो ना,
यानी ज्ञायक यानी आत्मा जानने वाला है
हाँ,
परंतु वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहा है, वो हाँ, अपने ज्ञान के द्वारा
जान नहीं होता है, यानी जाना नहीं जाता है, इसलिए उस आत्मा को अलिंग ग्रहण कहते हैं। ये आ रीते आत्मा अति इंद्रिय ज्ञानमय छे, इंद्रियो वड़े ग्रहण थतु नथी लिखा ना, तो इसलिए है कैसा कि अति इंद्रिय ज्ञानमय छे, एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे। ये अलिंग ग्रहण जो शब्द है उसके जुदे जुदे 20 अर्थ किए हैं, उसमें से पहला अर्थ ये है कि आत्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता, वह अति इंद्रिय ज्ञानमय है, ऐसा पहला अर्थ किया। अभी दूसरा कह रहे ग्राह्य, ऊपर क्या कहा था, ग्राहक, उसका अर्थ उन्होंने ज्ञायक बताया था, अभी यहाँ ग्राह्य का अर्थ जनावा योग्य, एवा आत्मानु एवा जेनु लिंगो वड़े एटले इंद्रियो वड़े ग्रहण एटले जाणवू थतू नथी, ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्षनो विषय नथी। ऊपर क्या लिया लिखा था कि आत्मा अति इंद्रिय ज्ञानमय छे, अभी यहाँ दूसरा पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्षनो विषय नथी, यानी इंद्रियों से आत्मा जाना नहीं जाता। कैसा है आत्मा कि जनावा योग्य है, लेकिन जनावा योग्य होते हुए भी इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, जेम धुमाड़ा द्वारा अग्निनु ग्रहण थाय छे, यानी हम कहते हैं ना जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जेम धुमाड़ा द्वारा अग्निनु ग्रहण थाय छे, तेम लिंग एटले चिन्ह द्वारा, यहाँ के इंद्रिय गम्य द्वारा, इधर तीनों ही जगह लिंग का अर्थ इंद्रिय की अपेक्षा से किया गया, तो एटले इंद्रिय द्वारा एटले इंद्रियों थी जनावा योग्य चिन्ह द्वारा, जेनु ग्रहण एटले जाणवू थतु नथी, ते अलिंग ग्रहण छे। अभी यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, यहाँ लिखते हैं कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमाननो विषय नथी, यानी ये उसके अनुमान का विषय आत्मा नहीं है,
यानी ऐसा कहना चाहते कि आत्मा में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं।
तो इसलिए पहले क्या लिखा, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक, यानी इंद्रियों से हमने बोल दिया, हमने आपको प्रत्यक्ष देखा था साहब, आप भूल गए, दिल्ली में हम मिले थे ना, हम आप बिल्कुल सामने सामने खड़े थे, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष, ये कह रहे कि ये इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है इस उसके बाद में अनुमान, यानी अनुमान के पहले इंद्रिय प्रत्यक्ष, वो कोई आत्मा को समझने के जानने का तरीका नहीं है। तो कहते आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान नो विषय नथी, यानी अनुमान से आत्मा जाना नहीं जाता, वो अनुमान के पहले इंद्रिय पूर्वक कहा। अब आगे क्या कहते हैं, बीजाओ वड़े मात्र लिंग द्वारा ज जेनु ग्रहण थतु नथी, ते अलिंग ग्रहण छे। एटले आ रीते आत्मा अनुमेय मात्र, अनुमेय यानी क्या, केवल अनुमान थी जो जनावा योग्य न थी। ये चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं, जेने लिंग थी जो परनुग्रहण थतु न थी, यानी चिन्ह से दूसरों को यानी इंद्रियों से दूसरों को, तो कहते हैं आ रीते आत्मा अनुमाता। अनुमाता का अर्थ क्या किया, केवल अनुमान करना रोज न थी, एवं अर्थ नहीं प्राप्ति थाई छे। अब छठा पॉइंट जो है, ये अभी अपने को कंसर्न पॉइंट है, यहाँ पर अभी जो अपना विषय चल रहा है, लिंग द्वारा नहीं पन स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाई छे, यानी क्या कहा, ये इंद्रिय द्वारा नहीं, चिन्हों द्वारा नहीं, परंतु अपने स्वभाव से ही जो जानने में आता है, ऐसे आत्मा को अलिंग ग्रहण कहेंगे। आ रीते आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे, एवा अर्थनी प्राप्ति थाई छे। अभी क्या कह रहे, देखो जो आ छठा बोल मा स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाई छे, यानी स्वभाव क्या है आत्मा का, ज्ञान, ज्ञान। तो स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाई छे एवो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे, एम कहियु छे। आहा हा, आवो आ वितराग नो मार्ग छे, पन अरे रे सर्वज्ञ परमेश्वर ना विरह पड़िया ने बार मा घणी बधी गड़बड़ उभी थई छे। आई कहे छे इंद्रिय प्रत्यक्ष के इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान वड़े जाणवामां आवे एवो आत्मा नथी, तेमज पोते इंद्रिय थी के अनुमान थी पर नहीं जानो एवो पन, यानी वो स्वयं जाना नहीं जाता और उसके द्वारा दूसरे को भी नहीं जानता, यानी जानता है तो प्रत्यक्ष जानता है। क्या कहा फिर से, तीसरी लाइन पढ़ता हूं। आई कहे छे इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी आत्मा को इंद्रिय से जाना जाए ऐसा नहीं है, अने इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान, इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया था, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा हम इंद्रिय प्रत्यक्ष धुआं देखा और फिर हमने अनुमान किया कि वहां अग्नि होना चाहिए, ऐसा कह रहे इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान वड़े जाणवामां आवे एवो आत्मा नथी, तेमज पोते यानी आत्मा स्वयं इंद्रिय थी के अनुमान थी पर ने जाने एवो पन आत्मा नथी।
यानी पुद्गल को जानता
तो है, तो कैसा जानता है, स्व के स्वभाव से जानता है, ज्ञान से जानता है, दूसरे के किसी इंद्रियों से या अन्य से नहीं जानता है। हाँ जी,
ये पेन देख रही है आपको, किससे देखी, आंखों से देखी ना, नहीं कहते कि इंद्रियों से जाने या आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से जान रहा है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है ना ही गेय से ज्ञान हो रहा है।
अभी हम दूसरी भाषा में
अपने स्वभाव से ज्ञान हो रहा है,
ये पेन से ज्ञान हुआ है क्या, हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, हाँ अभी कैसे, ज्ञान से होता है यही बताना चाहती है,
ना पेन से हुआ है ना प्रकाश के कारण हुआ है और ना ही आंख से हुआ है, वो ज्ञान के कारण ज्ञान हुआ है, आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञाता है, ये बात यहाँ बताए, वो व्यवहार परिभाषा है।
देखो अभी आप घर पे जाएंगे वहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बातें आएगी, उसमें दो परिभाषाएं दी है। अभी पहली परिभाषा जो है वह जिसमें मति ज्ञान जिसमें इंद्रिय
पांच इंद्रिय मन निमित्त है, निमित्त का
वो
निमित्त से तो होता नहीं है, निमित्त नहीं है इसको, किसको उसकी कौन मना करे, निमित्त
वो व्यवहार परिभाषा है और दूसरी जो है वह निश्चय परिभाषा है।
व्यवहार है ने पर को जानने के लिए वो परिभाषा है, परंतु वहां भी निमित्त कहा है, निमित्त से होता है ऐसा नहीं कहा, यहाँ भी इंद्रिय ज्ञान जो है उसमें जानने वाली इंद्रिया नहीं है, स्वभाव से उसका ज्ञान चल रहा है।
एक एक मिनट, एक कमंडलू के राइट साइड में ऊपर दोनों निकल, एक उनको
यानी मति ज्ञान की दो प्रकार से परिभाषा है, एक तो पर पदार्थों को जानने वाला मति शुद्ध ज्ञान जिसको परोक्ष कहा, और एक आत्मा का ज्ञान करने वाला मति ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान क्यों कहा है वहां पर, स्पष्ट नहीं है ना, विशद नहीं है। आत्मा का अनुभव स्पष्ट है, इसलिए उसको अनुभव को प्रत्यक्ष कहा। परंतु होता है स्वभाव से, यह आत्मा का अपना स्वभाव है कि ज्ञान होता है, नहीं तो निमित्त से होता है मानना पड़ेगा। निमित्त से तो कार्य नहीं होता है, अब ज्ञान की पर्याय ये भी कार्य है, उसमें भी निमित्त लगाओ तो निमित्त से तो नहीं होता। तो इंद्रिय से जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं, ये बात बताना चाहते हैं। पर स्वयं के जानने के लिए भी इंद्रिया कोई काम नहीं, तो पर को जानने के लिए है ना, तो वहां भी जो ज्ञान चल रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं।
इसमें जो चाहिए वो नहीं लिखा है, वो अपनी जो छोटी पुस्तक है ना लघु सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें है वो बात। चलो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? हाँ चलो, देखो कोई भी बात हमारे ख्याल में नहीं आती है तो बिल्कुल पूछना हो। अभी फिर से पढ़ रहा हूँ, ये जुआ छठा बोलमा पहली लाइन, स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाय छे एवो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे एम कहूँ छे। आवो आ वितरागनो मार्ग छे, पण अरे रे सर्वज्ञ परमेश्वरना वीर पड़िया ने बारमा घनी बधी गड़बड़ उभी थई गई छे। इंद्रिय प्रत्यक्ष के इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान वड़े जाणवामां आवे एवो आत्मा नथी, आत्मा की बात चल रही ना। अने तेमज पोते इंद्रिय थी अथवा के अनुमान थी परने जाने એવો પણ આત્મા નથી। આહ હા, તો કેવો છે આત્મા? પોતાના સ્વભાવ વડે જાણવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા પ્રભુ આત્મા છે, એને વો આત્મા હંમેશા પ્રત્યક્ષ હી હૈ। અહીં આ બારમી શક્તિના વર્ણનમાં આ જ વાત કરી છે, આત્મા પોતે જ પોતાના સ્વસંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ થાય એવો તેનો પ્રકાશ સ્વભાવ છે। ये मूल बात है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका मूल क्या है? तो कह रहे हैं पोताना, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ फिर, पोताना स्वभाव वड़े जाणवामां आवे एवो प्रत्यक्ष ज्ञाता प्रभु आत्मा छे। आई आप वगैरह वगैरह सॉरी सॉरी मैं बहुत पीछे गया, और एक आगे लाइन चलो, आत्मा पोते ज पोताना स्वसंवेदन में प्रत्यक्ष थाय एवो तेनो प्रकाश स्वभाव छे। इंद्रियों थी नहीं, राग थी नहीं, पन पोताना स्वभाव थी जाणवामां आवे एवो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे। एवा अलिंग ग्रहण ना छठा बोल साथे आई मेळ छे, समझाणू काई? आहा આ પ્રકાશ શક્તિમાં એવું અચિંત્ય દિવ્ય સામર્થ્ય છે કે કોઈ પર, તો પર મેં કિસકે લિયા, નિમિત્તની અપેક્ષા વિના જ તે પોતાના જ સ્વસંવેદન વડે આત્માના આત્માને પ્રત્યક્ષ કરે છે। આહા અભી બાત ખ્યાલમાં આ ગઈ? આવી દિવ્ય શક્તિ સંપન્ન નિજ આત્માને અંતર્મુખ થઈ દેખે तो द्रव्य दृष्टि उघड़ी खिली जाए। यहाँ द्रव्य दृष्टि का अर्थ जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी अपनी बुद्धि और मान्यता होना, इसको कहा द्रव्य दृष्टि। तारा आत्मान आत्मानो अपार अनंतो वैभव देखो होए तो तारा दिव्य चक्षु यानी द्रव्य चक्षु खोल। આ બહારના ચામડાના ચક્ષુ વડે એ નહીં દેખાય, એને ઇન્દ્રિયો દ્વારા નહીં દેખાય, ચામડાના ચક્ષુ નહીં અંદર રાગના ચક્ષુ યાને રાગ કે દ્વારા ભી જાનને મેં નહીં આતા હૈ એ વડે પણ નહીં દેખાય, અંતરના સ્વભાવ ચક્ષુ વડે જ તે જણાશે અનુભવાશે। એ સ્વભાવ ચક્ષુ કોણ હૈ ભાઈ? નરેનભાઈ देखो दो बातें बताई, चमड़े के चक्षु बताए ना, क्या बताए? चामड़ा ना चक्षु, राग ना चक्षु, उसके साथ साथ बोलते हैं अंतर ना स्वभाव चक्षु, ज्ञान कौन सा? नहीं, हाँ अरे मति शुद्ध ज्ञान, तो आपका जो प्रश्न है उसी का उत्तर है इसमें कि मति शुद्ध ज्ञान आत्मा का स्वभाव भले नहीं कहवे, ज्ञान स्वभाव है वो आपने सही बताया जहाँ आपने ज्ञान बताया, लेकिन अभी कौन सी पर्याय चल रही है अपनी मति शुद्ध, और अभी अनुभव तो मति शुद्ध में ही होगा। आपने भी उत्तर दिया था कि भाई अवधि ज्ञान से और मन परिज्ञान से आत्मा, तो फिर केवल ज्ञान से तो होता होगा कि नहीं? अरे पर यहाँ तो निचली भूमिका की बात चल रही है, केवल ज्ञान तो जब यहाँ मति शुद्ध ज्ञान सम्यक होगा तो आगे जाके केवल ज्ञान होगा, है ना? तो यहाँ क्या कहते हैं, अंतर स्वभाव चक्षु एटले ज्ञान वड़े से जनाशे अनुभवाशे समझाणु काय। ये तो टीका प्रारंभ करता मंगलाचरण माज आचार्य देवे कहूं छे, ये किसने कहा है? नमस् समय सारा ये स्वानुभूत्या चकासत, यहाँ बेन किसने लिखा है ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अमृत चंद्राचार्य ने की टीका लिखी, बताए ना। और ये अमृत चंद्रा ने क्यों लिखा? अरे ये संस्कृत है, उन्होंने प्राकृत में लिखा है। हाँ, ऐसा हमें थोड़ा सा अंदाज लेके बराबर बोलना चाहिए। एम के पोत अभी नमस् समय सारा ये स्वानुभूत्या चकासते, ये हम रोज बोलते हैं ना, तो कहते पोते पोतानी अनुभूति थी प्रकाशमान छे एवा समयसार नाम शुद्ध आत्मा ने नमस्कार। यहाँ तो इतना ही लिखा है कि अनुभूति थी प्रकाशमान, स्वानुभूत्या लिखा ना, एवा समयसार शुद्ध आत्मा ने हूँ नमस्कार करूँ छू, तो उनको नमस्कार हो। तो यहाँ और एक बात बताई, कौन सी? पोते पोतानी स्वानुभूति थी प्रकाशमान छे, प्रकाश शक्ति की बात चल रही ना, तो उसको यहाँ अटैच करके ही समझा रहे हैं हमको। पोते पोतानी अनुभूति थी प्रकाशमान छे एवा समयसार नाम शुद्ध आत्मा ने नमस्कार। हा हा, निमित्त के व्यवहार ना अवलंबन विनाश आत्मा सच्चिदानंद प्रभु स्वयं पोताना स्वभाव थी स्वानुभूति माँ प्रकाशे छे। भाई आ तो तने त्रिलोकीनाथ, अरे बाप रे टाइम हो गया, अच्छा ये पढ़ लेते हैं। आ तो तने त्रिलोकनाथ केवड़ी परमात्मा ना वेन एटले घेन आयवा छे तेनो नकार न कराय। लौकिक मां पण एम ज होय के दीकरानी सगाई करवानी होय ने 10-20 घरना नाळियेर आव्या होय तो तेमाती जे मोटा घरनु केन होय ते स्वीकारी ले छे, तो आ तो केवड़ी सर्वज्ञ परमात्मा ना सर्वोच्च घरना केन बापू, तेनो झट स्वीकार कर ना न पाड प्रभु, मुक्ति सुंदरी साथे तारा सकपन करवाना केन छे। आनंदजी गंजी ना एक पद मां आवे छे ने के समकित साथे सगाई की दी सपरिवार सुघाड़ी, ये तीन लाइन पढ़ के बंद करूंगा। पन समकित साथे सगाई क्यारे थाय के स्वभाव सन्मुख थई आत्मा ने स्वसंवेदन थी प्रत्यक्ष जाने त्यारे। आ सर्वज्ञ परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में आवेला कहन छे, अहो आ तो जन्म मरण ना रोग नु निवारण करनारी भगवान आत्मा भगवान केवड़ी कहेली परम अमृतमय औषधि छे। जावानी के ज्ञान तय